प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 28 जून 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्यारे साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी क्रम में मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 12 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं अरविंद कुमार जो दिल्ली से हैं, लाल चंद राव आप चूरू राजस्थान से हैं, मोहम्मद इस्लाम अंसारी आप गिरिडीह झारखंड से हैं, मनीषा चौधरी कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं, प्रियंका कुमारी पटना बिहार से हैं, क्रांति नामदेव पाटिल नागपुर महाराष्ट्र से हैं और नागपुर महाराष्ट्र से ही हैं गजभिये, मोदाराम देवासी आप जोधपुर राजस्थान से हैं, शिव कुमार आनंद गोडा झारखंड से हैं, सविता रानी होशियारपुर पंजाब से, जुनेद मुगल इंदौर मध्य प्रदेश से और प्रणय प्रकाश समस्तीपुर बिहार से। तो अरविंद, लालचंद, मोहम्मद इस्लाम, मनीषा, प्रियंका, क्रांति, गजभिये, मोदाराम, शिवकुमार, सविता, जुनेद और प्रणय आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी के साथ ही मैं आप सब की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बधाई देता हूं दावर गणपत को जिनका मेल मिला है और MPPSC के फाइनल में उनका सिलेक्शन हो गया है और उन्होंने इसका श्रेय DAG को भी दिया है, यानी कि डेली ऑडियो गाइडेंस को भी दिया है। तो दावर, आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई और आगे आप अपने जीवन में इससे भी बेहतर सफलताएं प्राप्त करते रहें, हम सब की तरफ से इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अब मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने जैसे ही अब मेरे स्वास्थ्य की थोड़ी सी खबर सुनी, आप सबने उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं और मेरे बिहाफ पर ईश्वर से प्रार्थना की है कि मेरा स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आपकी यह प्रार्थना डेफिनेटली मेरे प्रति व्यक्त किया गया, आप सबका विश्वास, प्यार, सम्मान, जो भी आप इसे नाम देना चाहें या सब कुछ मिलाकर, उसका प्रमाण है मित्रों। और मैं बताना चाहूंगा कि धीरे धीरे स्थिति काफी ठीक हो रही है, क्योंकि मसूड़ों की सर्जरी हुई थी तो धागे लगने के कारण थोड़ी सी बोलने में मुझे अभी भी काफी परेशानी हो रही है। फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं किसी तरह से डेली ऑडियो गाइडेंस के अपने दायित्व को, या यूं कह लीजिए कि अपने इस धर्म को निभाऊं ही, और सच पूछे तो ये मैं नहीं निभा रहा हूं बल्कि आप सब निभवा रहे हैं। आप सबका जो इतना प्यार मिलता है वो एक ऊर्जा देता है और फिर लगता है कि किसी भी हालत में कम से कम इस प्यार का प्रत्युत्तर तो दिया ही जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया यह डेली ऑडियो गाइडेंस एकेडमी की ओर से और मेरी ओर से दिया गया आप सबके प्यार, सम्मान और विश्वास का ही एक छोटा सा प्रत्युत्तर है। दोस्तों, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं आज के लाइफ मैनेजमेंट वाले प्रसंग पर। और आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए जो मैंने विषय चुना है वो एक करेंट अफेयर को चुना है, और एक ऐसे करेंट अफेयर को जिसके अभी पूरी दुनिया में चर्चा है। शायद अगर आप अनुमान लगाएं तो अनुमान लगा भी सकते हैं, क्योंकि जो भी मित्रों मुझे लंबे समय से सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको मेरे बातचीत करने का तरीका, मेरी सोच, मेरा अपना चयन, इन सब का जो एक आधार होना चाहिए उसका अनुमान तो काफी कुछ लग ही गया होगा, और ऐसा होता भी है। तो जो लगभग लगभग एक साल से सुन रहे हैं वो थोड़ा सा सोच कर देखें कि मैं ऐसे किस करंट अफेयर्स को आज अपने लाइफ मैनेजमेंट में लेने जा रहा हूं जिसके अभी पूरी दुनिया में चर्चा है, या कौन सी ऐसी कल घटना घटी है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा आज हो रही है। मित्रों, हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने सही अनुमान लगा लिया हो, गलत भी अनुमान लगाया हो, तो प्लीज आज के लाइफ मैनेजमेंट में मेरा संदेश जो आप सबके लिए है वो ये है, हार मत मानिए, कम से कम कोशिश तो कीजिए ही, भले ही वह चीज आपको न सूझे लेकिन अपने दिमाग को धक्का दीजिए। मित्रों, जो खिड़कियां जो दरवाजे बहुत लंबे समय से बंद थे, अभी आप उन्हें खोल कर देखें बरसात के दिनों में, तो चिड़मिर चिड़मिर आवाज आने लगेगी उसमें से, इसलिए क्योंकि उन्हें कभी खोलने की कोशिश नहीं की गई। हमारे दिमाग के साथ भी ऐसा ही होता है, अगर उसे आप सच पूछिए तो सोचने की आदत नहीं डालेंगे, मैं चिंता करने की आदत नहीं कर रहा हूं, मैं चिंतन की बात कर रहा हूं, तब तक उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, वो क्षमता नहीं आएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से मैं डेली ऑडियो गाइडेंस में एक बात आप लोगों को लगातार देता हूं, जिसे होमवर्क कह लीजिए या एक्सरसाइज कह लीजिए, कि आप सब भी उस पर विचार करें। इसके बिना कम से कम सिविल सर्विस में सफलता बहुत संदेहास्पद है, और सच पूछे तो मुझे तो कभी कभी यह भी लगता है कि शायद जिंदगी में ही सफलता बहुत संदेहास्पद रहती है, जिंदगी चलती रहती है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन एक सफलता की बात है कि जो आपने सोचा है, आप जो कर सकते हैं उसे नहीं कर पाना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी असफलता की तरफ तो इंगित करती ही है। तो मित्रों, आप लोगों ने सोच लिया होगा, और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं उनका नाम है लियोनेल मेसी। और अब आप फिर अपने दिमाग में सोचिए कि ये लियोनेल मेसी कौन है। मेसी के नाम से आप समझ जाएंगे, क्योंकि मेसी तो बहुत बड़े फुटबॉलर रहे हैं, और पिछले साल जब यूरोप मतलब विश्व फुटबॉल प्रतियोगिता हो रही थी, पिछले साल या उससे भी एक साल पीछे, तो मैं कोई भी ऐसा मैच छोड़ता ही नहीं था जिसमें मेसी खेलने वाले हों, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि ये जादूगर जैसे हैं। जैसे कभी मैं ब्राजील के जो पेले थे उनका बड़ा मुरीद था, मतलब एक तरीके से मेरे लिए वो आइकॉन थे, हीरो थे। मुझे याद है कि उस समय मैं छत्तीसगढ़ में रह रहा था अंबिकापुर में, और ये हुआ कि पेले कलकत्ता में आकर के और मैच में खेलेंगे, तो मैच देखने जाने की तो हिम्मत नहीं थी, टीवी भी उस समय जगह जगह नहीं होती थी, तो मैंने स्पेशली प्रोग्राम बनाया था कुछ अपने बिजनेस को ही लेकर के कि कलकत्ता चला जाए, वहां कम से कम टीवी पर पेले का मैच तो देख सकेंगे, और मैंने देखा भी था। मेसी उन्हीं लोगों में एक है, उसी तरह के लोगों में से हैं फ्रेंड्स। मैंने यहां जानबूझ करके लियोनेल मेसी का नाम लिया है, क्योंकि जनरली मेसी के नाम से वो फेमस हैं, तो मैंने थोड़ा सा उनका पूरा नाम लेने की यहां कोशिश की है कि मालूम हो कि ये लियोनेल मेसी हैं। मित्रों, आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि जो अर्जेंटीना के एक महान खिलाड़ी हैं मेसी, और वो जब कोपा अमेरिका के फाइनल में अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे थे, भाग ले रहे थे, अर्जेंटीना और चिली के बीच मैच था, और लकली देखिए कि कोपा अमेरिका में जो पहुंचने वाले जो दोनों देश हैं वो लैटिन अमेरिकी देश हैं। आपको नक्शे में इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि चिली कहां है और अर्जेंटीना कहां है, और उसमें पेनाल्टी शूट आउट था, मतलब और उस पेनाल्टी शूट आउट को मेसी ने मिस कर दिया, पहला ही गोल मिस कर दिया, और उसके कुछ ही देर बाद मेसी ने विश्व फुटबॉल प्रतियोगिता से संन्यास लेने का की घोषणा भी कर दी। मित्रों, ये दो बातें हैं, और इन्हीं को लेकर के मैं लाइफ मैनेजमेंट पर कुछ आप लोगों से बातें करूंगा। पहला तो ये मान करके चलिए मित्रों कि चाहे कोई चीज कितनी भी मूल्यवान हो, आपके लिए कितनी भी उपयोगी हो, और दूसरी बात कि आप उसमें कितने भी सक्षम क्यों न हो, आप उसमें बहुत सक्षम हैं, लेकिन यदि आप उसके प्रति बहुत संवेदनशील हो गए, अतिरिक्त संवेदनशील हो गए, तो मानकर चलिए कि वो सरल से सरल काम को भी आप नहीं कर पाएंगे, वह भी आपके लिए कठिन हो जाएगा। ये एक प्रमाण है, मतलब मेसी जैसे खिलाड़ी के लिए पेनाल्टी शूट आउट मार पाना कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने उनको खेलते देखा है, छह छह सात सात खिलाड़ी उनको घेरे रहते थे, मतलब जब भी मेसी खेलते हैं तब दूसरी टीम यही कोशिश करती है कि उनके चार पांच खिलाड़ी लगातार मेसी को घेरे रखें, क्योंकि अगर मेसी के पास बॉल रही और वो घिरे हुए नहीं है तो फिर वो ले जाकर के सीधे गोल में मारेंगे। तो ऐसा मेसी जो अपने डी एरिया से बॉल को ले जाकर के सामने वाली टीम के गोल में डाल सकता है, सोचिए कि खाली है डी एरिया, कोई रोकने वाला नहीं है सिवाय एक गोलकीपर के और उसको वो नहीं मार पाए। निश्चित रूप से ये उनके लिए बहुत दुखद बात थी। क्यों नहीं मार पाए, इसका कारण है मित्रों कि उनके दिमाग में उस क्षण जब वो फुटबॉल को बॉल को जब हिट कर रहे थे तो ये आया होगा क्षण भर के लिए, या कह लीजिए कि एक सेकेंड के सौवे हिस्से के लिए, यदि गोल नहीं हुआ तो बस। जैसे ये हुआ कि गोल नहीं हुआ तो संवेदनशीलता बहुत ज्यादा बढ़ गई, इनर बैलेंस खत्म हो गया और वही हो गया जो उन्होंने सोचा था, गोल नहीं हुआ। मित्रों, अतिरिक्त संवेदनशीलता का यह सबसे बड़ा नुकसान होता है, सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसलिए जापान में कहा गया है कि जो वहां समुराई होते हैं, जो वीर योद्धा होते हैं, उनके लिए कहा गया है कि उनके पास बुद्ध की शांति चाहिए और योद्धा का आक्रामक चाहिए। मतलब योद्धा की आक्रामकता हो लेकिन अंदर कहीं ना कहीं बुद्ध जैसी शांति भी होनी चाहिए। इन दोनों के मेल से ही आप जीत हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों के जीवन में भी ऐसे दौर आएंगे, और चूंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो वो दौर आपको सबसे ज्यादा जो झेलना पड़ेगा वो यूपीएससी के इंटरव्यू के समय, कि जब आप एक बड़े से हॉल में अपने जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स के साथ बैठकर अपने नाम के पुकारे जाने की प्रतीक्षा करेंगे। उन क्षणों को बर्दाश्त करना आसान नहीं होता है। वो क्षण आपको बहुत अतिरिक्त रूप से संवेदनशील बना देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर हम यहां सेलेक्ट नहीं हुए तो फिर प्री से शुरू करना पड़ेगा और इसकी कोई गारंटी नहीं कि प्री में फिर से सिलेक्शन हो ही जाए। तो उस अतिरिक्त संवेदनशीलता को आप कैसे बर्दाश्त करेंगे मित्रों? इसीलिए अक्सर मैं जब भी कोई स्टूडेंट पूछता है, और पूछे न भी तो भी मैं उनसे कहता हूं कि इससे पहले कि आप सिविल सर्विस में जाएं, यदि आपको कोई दूसरी सर्विस मिल रही है उसे ज्वाइन करने से कभी भी पीछे न हटें, उसे इग्नोर मत करें, चाहे वो कितनी भी छोटी नौकरी क्यों ना हो। ये आपको एक अतिरिक्त कॉन्फिडेंस देगी और आपकी जो अतिरिक्त संवेदनशीलता है उस पर कंट्रोल ले आएगी, ऑटोमेटिक तरीके से वो कंट्रोल कर लेगी उसको। इसलिए मित्रों, जो चीज जितनी बड़ी होती है उतना उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। जैसे कि अब ये पेनाल्टी शूट आउट, इसमें बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व था। रिस्क किन चीजों से बनता है? पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया जान रही है, इसकी खबरें छपेंगी, उसी से तो रिस्क है। हम एक छोटा सा एग्जाम देते हैं, आप बीए का एग्जाम दिया है, ग्रेजुएशन का, और दसवीं बारहवीं का एग्जाम दिया है, उसकी घटना कोई छोटी सी घटना थी, उसकी घटना की कोई जानकारी दूसरों को नहीं होती है। लेकिन अगर आप जब सिविल सर्विस दे रहे हैं तो आपको मालूम है कि जैसे ही आप सेलेक्ट होते हैं उसकी जानकारी आपके पूरे स्टेट वालों को हो जाती है, पूरे देश वालों को हो जाती है। तो जिसका फैलाव जितना ज्यादा होगा उसमें उतना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, और जिसमें जितना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है दोस्तों, वह चीज उतनी ज्यादा संवेदनशील बन जाती है। नंबर एक। नंबर दो, वो ये फ्रेंड्स की क्या जरूरत थी कि कुछ ही समय बाद मेसी इस प्रतियोगिता से या फुटबॉल के खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दें? एक असफलता उनके पूरे भविष्य की असफलता की गारंटी तो नहीं है, रास्ते तो बंद नहीं हो रहे हैं। तो मेसी ने यह निर्णय क्यों लिया? मेसी ने निर्णय शायद इसलिए लिया कि उस समय वो इमोशनली बहुत ज्यादा चार्ज्ड हो गए थे। इमोशनली चार्ज्ड होने के कारण ही वो गोल नहीं कर पाया, और इमोशनली चार्ज्ड होने के कारण ही उन्होंने ये निर्णय लिया। लॉजिक को उन्होंने ड्रॉप कर दिया था, उनके मन में इतना जबरदस्त अपराध बोध घर कर गया था कि मैं चार बार पांच बार हमारा देश फाइनल में पहुंच गया है और ये मौका था जबकि मैं चैंपियन बना सकता था, मैं चैंपियन नहीं बना पाया। तो पूरे राष्ट्र के सामने वो अपने आप को कहीं ना कहीं अपराधी महसूस कर रहे थे, और फिर उनको लगा कि प्रायश्चित करने का शायद उपाय यही है कि मैं अब इससे संन्यास ले लूं, मैं इसके लायक नहीं रह गया हूं। पूरा देश उनका, अपनी पूरी दुनिया सच पूछिए तो उनके इस निर्णय से अचंभित है, क्योंकि ही इज ओनली 29 ईयर्स ओल्ड, अभी तो केवल 29 साल के हैं, अभी उनके पास वक्त था। लेकिन चूंकि वो इमोशनली बहुत ज्यादा चार्ज्ड हो गए, ये इमोशंस फिर से आपको अंदर से इम्बैलेंस कर देंगे, असंतुलन पैदा कर देते हैं। और याद रखिए कि जब भी आप में असंतुलन होगा उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। संतुलन ही जीवन के आध्यात्मिकता का आधार है। सच पूछिए तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि संतुलन ही आध्यात्मिकता है। जहां संतुलन है वहां सब कुछ है, पूरे के पूरे प्रकृति में जब तक संतुलन है सब चीजें सर्वोत्तम स्थिति में है। जैसे ही असंतुलन हुआ तो कभी तूफान आने लगेगी, कहीं बाढ़ आ जाएगी, कहीं भूकंप आ जाएगा, ये सब के सब असंतुलन के कारण है। ये प्रकृति में नहीं होता है, हमारे जीवन में भी होता है, और मुझे लगता है कि मेसी शायद इसके सबसे ज्यादा शिकार हो गए, वो अपने को संभाल नहीं पाए। तो मित्रों, मेसी के माध्यम से मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि प्लीज कोशिश कीजिए कि आप अपना संतुलन किसी भी हालत में न खोएं, और अगर कभी आपको लगता है कि अभी आप संतुलन में नहीं हैं तो प्लीज डोंट टेक एनी मेजर डिसीजन, डोंट टेक एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन। उस समय कम से कम आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिए, थोड़ी देर के लिए टाल दीजिए, फिर संतुलन में आप आएंगे। और भले ही यही आपको निर्णय लेना पड़े, कोई बात नहीं, आप यही निर्णय लीजिएगा, लेकिन फिर आपको अफसोस नहीं रहेगा और वो निर्णय एक तार्किक निर्णय होगा, बड़ा सोचा समझा हुआ निर्णय होगा। फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। दोस्तों, आपने न्यूज सुनी है, कल के न्यूज में कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं जिनकी चर्चा मैं आप लोगों से करना चाहूंगा, और एक आध अगर समय रहा तो मैं कुछ हट करके भी चर्चा करूंगा, हालांकि जिनका संबंध है तो न्यूज से ही, लेकिन वो कोर या हार्ड कोर न्यूज नहीं है। जो सबसे ज्यादा वक्त जो दिया गया है न्यूज में, वो दोस्तों MTCR भारत सदस्य बन गया है। अखबारों में भी आप देखेंगे कि आज उस पर काफी छपा है, न्यूज चैनल्स पर भी काफी आया, अखबारों में आर्टिकल्स भी हैं, एडिटोरियल कमेंट्स भी हैं, डिटेल्स में भी हैं कि ये सब चीजें क्या हैं, बहुत जानकारियां दी गई हैं। तो पहली बात तो यह है कि आप सब जो भी अखबार ले रहे हों उसकी बैकग्राउंड अगर उसमें छपी है तो आप प्लीज उसे अच्छे तरीके से नोट कर लें या उसकी कटिंग रख लें। मुझे ये तो नहीं लग रहा है कि इस पर सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछ लिया जाएगा, क्योंकि जनरली देख रहे हैं कि पिछले 3 सालों से जो क्वेश्चंस का जो शेड है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। हार्ड टाइप की के प्रश्न नहीं दिए जाते हैं कि भारत को इससे क्या फायदा होगा और क्या बना, कैसे बना, इस तरह के प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के कि भारत की जो सफलता है या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो भारत का एक दबदबा बढ़ रहा है, भारत एक विश्व नेतृत्व की तरफ जा रहा है या टेक्नोलॉजी में बहुत वो डेवलप कर रहा है, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये एक कंटेंट के रूप में काम करेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट के रूप में काम करेगा। तो मित्रों, MTCR जो है आपने पढ़ा होगा, ये इसका फुल फॉर्म है मिसाइल्स टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिज्यूम, जिसके लिए हिंदी में अनुवाद किया गया प्रक्षेपास्त्र टेक्नोलॉजी या तकनीकी नियंत्रण व्यवस्था। ये आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, और एक सिंपल सी चीज है दोस्तों कि मुझे लगता है कि जब भी हम किसी भी संज्ञा को देखते हैं या नाम को देखते हैं तो सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। मिसाइल्स, सीधी सी बात है कि ये एक व्यवस्था है, एक संस्था होगी जो मिसाइल्स से जुड़ी हुई होगी, मिसाइल्स दिया हुआ है प्रक्षेपास्त्र। फिर है टेक्नोलॉजी, ये मिसाइल से ही नहीं जुड़ी हुई है बल्कि मिसाइल्स के स्पेशली यानी कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। कंट्रोल, टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने वाली यानी कि मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने वाली एक व्यवस्था है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कुछ देश मेंबर हैं, भारत अभी उसका मेंबर बना है, और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है इसको कंट्रोल किया जाए। आपने देखा कि इसमें जो पढ़ा होगा आपने कि जो मिसाइल्स को कंट्रोल करने की जो बात कही गई है, आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के सामने युद्ध का तो भयानक संकट मंडरा ही रहा है, छोटे छोटे युद्ध हो भी रहे हैं और लगातार इस धरती पर ऐसा कोई क्षण नहीं होगा जबकि युद्ध जारी न हो, चाहे वो आतंकवाद के रूप में ही क्यों न हो। आतंकवाद भी अपने को कहते हैं कि हम कोई जिहाद कर रहे हैं, आतंकवादी जो होते हैं कोई युद्ध कर रहे हैं। तो इनका जो मेन है दोस्तों कि इसके जो तकनीक है टेक्नोलॉजी के प्रसार को रोकना है ताकि दुनिया और विध्वंसक हथियार न बना सके, और मिसाइल्स की जो क्षमता है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वो 300 किलोमीटर के दायरे में ही रखा जाना चाहिए। यानी कि अगर आप मिसाइल्स बना भी रहे हैं, प्रक्षेपास्त्र बना भी रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप भी कर रहे हैं, तो उसकी जो क्षमता हो विद इन 300 किलोमीटर तक की क्षमता होनी चाहिए। बाहर आपको मालूम है कि भारत के पास मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है, और अब जबकि भारत इसका 35वां मेंबर बन गया है, तो इससे आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत को क्या क्या लाभ होने हैं। लाभ की बात मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि मालूम होने चाहिए कि मान लीजिए इस पर कोई प्रश्न ही आ गया और उसकी समीक्षा करने के लिए कहा गया, तो आप तब तक उसकी समीक्षा नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको इससे होने वाले फायदे मालूम न हो। इससे होने वाले जो दो तीन चार फायदे हैं दोस्तों, वो आपको रट जाने चाहिए और बहुत ही सिंपल से हैं। पहला तो ये है कि अब भारत दूसरे देशों से जो इसके मेंबर जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं उनसे मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल कर सकेगा, मतलब लेटेस्ट मिसाइल्स टेक्नोलॉजी हासिल कर सकेगा, तो वो उसका एक डिफेंस का जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा होगा। और आपने देखा है कि भारत ने अभी अभी डिफेंस के क्षेत्र में 100% एफडीआई अलाउ की है, क्योंकि हमारे पास डिफेंस की टेक्नोलॉजी की काफी कमी है, जो मॉडर्न जो आर्ट ऑफ स्टेट टेक्नोलॉजी कहते हैं, बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी की कमी है। मित्रों आपने एक और भी, आप अगर लगातार जनरल स्टडीज से जुड़े हुए हैं तो देखा होगा कि कुछ समय पहले यह बात हुई थी कि भारत जो है रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है, रूस उसकी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, ब्रह्मोस उसका नाम है। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है बट नेचुरल है कि अब आप अपने लिए यूज करेंगे, लेकिन अब जबकि आप इसके मेंबर बन गए हैं तो एक फायदा आपको ये मिल सकता है कि आप ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात कर सके, एक्सपोर्ट भी कर सके, तो इस तरीके से आपकी इंडस्ट्री भी डेवलप होगी और आपको विदेशी मुद्रा भी मिल सकेगी। दूसरा एक बहुत बड़ा फायदा यह है। तीसरा जो फायदा है मित्रों, जो किसी मायने में कम नहीं है, वो है कि भारत को अब द्रोण आप समझते हैं मानव रहित विमान जिसको हम कहते हैं, द्रोण की आजकल बड़ी चर्चा होने लगी है, वो भारत को मिल सकेंगे। और खासकर एक प्रिडेटर ड्रोन है जो अफगानिस्तान में तालिबान के ऊपर अटैक करने के लिए भेजे गए थे, जो बड़े मॉडर्न ड्रोन माने जाते हैं, तो आप दूर दराज के एरिया में ड्रोन भेज सकते हैं, डर नहीं रहेगा कि साहब इसमें से अगर कुछ हो गया तो मारा जाएगा, और इस तरीके से आप काफी उसका उपयोग कर सकते हैं, तो वो भारत को मिल जाएंगे क्योंकि वो हाई टेक्नोलॉजी है और हमारे पास वो नहीं है। और जैसे मित्रों ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं, इसको आप दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक नक्सलाइट एरिया है भारत में, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश वाला एरिया, आप देख रहे हैं कि नक्सलाइट से कितना परेशान है, सीआरपीएफ के जवान मारे जा रहे हैं, आमने सामने मुठभेड़ हो जाती है, जब आप गाड़ी से जा रहे हैं तो पता लगा लैंडमाइन विस्फोट हो गया है, तो अगर आपके पास ड्रोन है तो आप बड़े आराम से उनकी निगरानी कर सकते हो, कहां कहां हैं, क्या क्या देख रहे हैं, तो इस तरीके से जो हमारे जो सुरक्षा बल हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके लिए ये बहुत जबरदस्त रूप से मददगार साबित होगा। अब ये टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाएगी। और एक आप ये भी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इसके कारण अब जैसे एनएसजी, आपने देखा नेशनल न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भारत की दावेदारी भारत ने पेश की थी लेकिन भारत उसका सदस्य नहीं बन पाया, तो ऐसे समय में चूंकि भारत अब इसका मेंबर बन गया है तो उससे इंटरनेशनल फोरम पर आपकी एक इमेज बन जाती है, आप मजबूत हो जाते हैं क्योंकि 35 देशों के ग्रुप में आप शामिल हो गए हैं, तो ये भी मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है, एक डिफेंस से ही जुड़ा हुआ मामला है, और सच पूछे तो न्यूक्लियर में भी जो भारत को मेंबर नहीं बनाया गया उसका आधार यही है कि परमाणु हथियार बना सकता है, हालांकि भारत बार बार विश्वास दिलाता रहा है कि वो ऐसा नहीं करेगा, और विश्वास ही क्या दिलाता रहा है, उसने प्रमाणित भी किया है क्योंकि हमने तो 1974 में जब मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तभी पोखरण में पहला परमाणु विस्फोट किया था, और आज सोचिए कि आज उसको कितने साल हो गए, 42 साल हो गए, लेकिन भारत के विरुद्ध ऐसा कोई कुछ नहीं कह सकता कि उसने कहीं भी परमाणु वस्त्रों का इस्तेमाल किया हो या बनाया हो। तो ऐसी स्थिति में अब जबकि वो इसका मेंबर बन गया है एमटीसीआर का, तो डेफिनेटली उसकी वहां दावेदारी और ज्यादा मजबूत होगी। दोस्तों इसी के साथ ही मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि एनएसजी की भी आप देख रहे हैं कि इसके साथ ही साथ लगातार चर्चा हो रही है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बारे में, उसमें चीन ने बाधा डाली है, और मैं आपको बताया था कि जो प्रक्रियात्मक जो प्वाइंट था वो चीन ने लिया है। दोस्तों अभी जो खासकर एक सिविल सर्विस की दृष्टि से मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मालूम पड़ रहा है और हो सकता है कि मैंने इससे पहले इसकी चर्चा भी की हो या संकेत किया हो कि पूरा का पूरा ये जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में एक अलग किस्म का कोल्ड वार और ग्रुपिज्म सा चल गया है, जिसको अमेरिका ने अब बैलेंसिंग एशिया पॉलिसी कहा है। मतलब अमेरिका ये चाह रहा है कि एशिया में जो पावर है, जो शक्ति है, उसका संतुलन होना चाहिए। ये असंतुलन क्यों हो रहा है? ये चाइना के कारण, क्योंकि चाइना एक अपने साम्राज्यवादी मंसूबे के तहत लगातार अपने क्षेत्र को फैलाता चला जा रहा है। आप देखेंगे कि वो साउथ चाइना के कई द्वीपों पर कब्जा करने की सोच रहा है, उसने अपने बेड़े तैनात भी कर दिए हैं, जो छोटे छोटे आसपास के राष्ट्र हैं वो उनका विरोध भी कर रहे हैं। इसको लेकर के अमेरिका थोड़ा सतर्क भी है। अब अमेरिका के लिए यही स्थिति बनती है कि वो भारत के साथ अपनी दोस्ती करे, क्योंकि उधर दूसरी ओर हो ये रहा है कि चीन अब पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान के कंधे पर अमेरिका का हाथ था, अब अमेरिका ने धीरे धीरे अपना हाथ पाकिस्तान से हटा लिया है, क्योंकि अमेरिका को दिक्कत ये हो रही थी कि पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां या उस तरह के अड्डे हैं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कैंप्स हैं, ये प्रमाणित हो चुके हैं। अब अभी भी अगर अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता है तो अमेरिका जो विश्व आतंकवाद के खात्मे की कोशिश में लगा हुआ है वो झूठा पड़ जाएगा, तो वो पाकिस्तान से अपने को धीरे धीरे विड्रा कर रहा है। अब चूंकि पाकिस्तान के कंधे की जगह खाली है तो अब उस पर चीन अपना हाथ रख रहा है, इस तरह से चीन और पाकिस्तान का इस क्षेत्र में गठजोड़ बन रहा है। इसलिए आपने देखा कि इसमें भी चीन ने यही कहा था कि एनएसजी के ग्रुप में कि सब पाकिस्तान को भी फिर क्यों नहीं बनाया जा सकता। दूसरी तरफ अमेरिका को भी एक ऐसा देश चाहिए जो शक्तिशाली हो और जो सक्षम हो और जो इस बैलेंस को ठीक कर सके, तो भारत के सिवाय उसके पास भी कोई दूसरा आधार नहीं है। इसीलिए आपने देखा है कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस के मामलों में काफी समझौते हुए हैं। तो इधर की जो समस्या है पूरे की पूरी एशिया प्रशांत क्षेत्र के मित्रों, जो साउथ चाइना महासागर भी जिसमें शामिल है, तो मैंने उसकी आपको अभी बेसिक बताई है, ये उसकी बेसिक्स हैं। अगर आप इस बेसिक्स के आधार पर इस तरह के जो भी लेख आते हैं, एडिटोरियल कमेंट्स आते हैं, समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए वो चीज बहुत आसान हो जाएगी और आपकी पकड़ के अंदर हो जाएगी। इसी को मैं बेसिक्स कहता हूं कि अगर आपके पकड़ में एक बार बेसिक्स आ जाती है, मतलब आप जड़ तक पहुंच गए, तो आपको एक एक पत्तों की सफाई करने की जरूरत नहीं है, एक एक पत्तों को पानी देने की जरूरत नहीं है, पोंछने की जरूरत नहीं है। आप जड़ में पानी डालते चले जाइए, पत्ते ऑटोमेटिक हरे होते चले जाएंगे। बेसिक्स पर पकड़ का यही फायदा होता है। और सच पूछे तो ये जो हमारे यहां के जो 15 दिन की क्लासेस हैं वो यही बेसिक्स ही आपको बताने की कोशिश करती हैं। मित्रों, जो एक और खबर थी AIR न्यूज की, वो विश्व आतंकवाद को लेकर थी और उसके बारे में कोई डिटेल तो नहीं था, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में, एक टीवी चैनल्स के इंटरव्यू में जो बात कही, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पूरा का पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ जो भारत के जो कदम हैं, जो कार्रवाइयां हैं, उनकी सराहना करता है, उनकी प्रशंसा करता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये एक प्रश्न बन सकता है। प्रश्न ऐसे तो नहीं बनेगा, इस तरह से बनाया जा सकता है कि भारत ने विश्व आतंकवाद के खिलाफ अब तक कौन कौन से कदम उठाए हैं, वे कहां तक प्रभावी रहे हैं, इस तरह का कोई प्रश्न हो सकता है। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड्स कि मुझे याद आ रहा है कि 1985 के आसपास या 85-90 के बीच में एक क्वेश्चन इस तरह का आया था कि विश्व शांति की स्थापना में भारत का क्या योगदान रहा है, खासकर संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में था कि यूएनओ विश्व में शांति स्थापित करना चाहता है तो उसमें भारत का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इस तरह का एक प्रश्न था। तो मुझे लगता है कि ये भी विश्व आतंकवाद, चूंकि विश्व शांति वाली बात अब उतनी नहीं रहेगी कि पीस कीपिंग फोर्स भेजी जा रही हूं, लेकिन ये जो विश्व आतंकवाद है डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। मुझे लगता है एक विश्व आतंकवाद, दूसरा पर्यावरण पेरिस सम्मेलन में देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छे वायदे भी किए और बहुत अच्छा भाषण भी दिया था, पर्यावरण के क्षेत्र में भी अब भारत काफी एक तरह से लीड ले रहा है, तो विश्व आतंकवाद मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मालूम पड़ता है, इसी तरह से विश्व पर्यावरण भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मालूम पड़ रहा है। और विश्व स्वास्थ्य भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हमारे जो एलिमेंट्री जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज हैं अभी बहुत पुअर हैं, तो इसलिए अभी वो प्रोमिनेंट नहीं है। मैंने जो स्वास्थ्य की थोड़ी सी चर्चा की है वो योग के संदर्भ में की है, जो भारत ने जो पूरी दुनिया को योगा दिया है। तो मित्रों, एआईआर न्यूज में इतनी थी। जो मैंने आपसे कहा था कि एक और टॉपिक है जिस पर मैं अगर समय मिलेगा तो बात करूंगा, लेकिन समय अब खत्म हो चुका है, इसलिए मैं लेकिन इस विषय पर मैं बात करूंगा आप लोगों से, समय निकाल करके उस पर मैं आप लोगों से बाद में बात करूंगा। आज प्रेस क्लिपिंग्स के अंतर्गत मैं कुछ बहुत अच्छी क्लिपिंग्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब ये क्लिपिंग्स देख लेंगे। मित्रों, मैं आता हूं ईमेल में, ईमेल पर। दोस्तों, मुझे मेल मिला है माधु सिंह बालोत जालोर राजस्थान से और रोहित सागर का, जिन्होंने लिखा है कि डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में ये लोगों को काफी बताते रहते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी इनको देखने को मिले हैं। तो माधु सिंह और रोहित, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कुछ और मुझे मेल मिले हैं जिनके कुछ मैं उत्तर दे रहा हूं, स्टूडेंट्स के नाम बताने की जरूरत मैं नहीं समझता। एक है कि अगर किसी को भी हकलाने की समस्या है तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने थोड़ा सा, तो क्योंकि कॉन्फिडेंस हकलाने को काफी कुछ मनोवैज्ञानिक स्तर पर कॉन्फिडेंस की कमी भी माना जाता है, बेहतर है कि इससे उबर लिया जाए। और मैं आपको बताऊं कि इससे बड़ी आसानी से उबरा भी जा सकता है। इसके लिए बकायदे स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, बकायदे इसका ट्रीटमेंट होता है, वो प्रैक्टिस कराते हैं। मैं एक मेरे ही जानने वाले थे जो मेरे मौसा जी के बेटे थे, इंजीनियर थे, वो बहुत हकलाते थे, लेकिन थेरेपिस्ट के जाने के बाद से उनकी हकलाहट बिल्कुल खत्म हो गई। और चूंकि मेल दिल्ली जैसे शहर से है तो उनको वहां तो थेरेपिस्ट मिल ही जाएंगे, तो कोशिश करना चाहिए कि आप इससे उबर जाएं। केवल सिविल सर्विस के लिहाज से ही नहीं, मतलब अपने डेली लाइफ के हिसाब से भी अच्छा होता है। दूसरा है दोस्तों, जैसा कि मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि सर्विस ज्वाइन करने के बारे में मेरे पास बहुत से लगातार मेल आते रहते हैं। मैं इस विचार का हूं कि सर्विस बिल्कुल चाहे छोटी ही क्यों ना हो, ज्वाइन कर लेनी चाहिए। इसके बारे में कोई सेकंड थॉट होना ही नहीं चाहिए। ये केवल भ्रम है कि सर्विस ज्वाइन करने के बाद पढ़ने के लिए समय नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके पास समय ही समय है, न कॉलेज जा रहे हैं, न कोई सर्विस कर रहे हैं, घर बार छोड़ करके सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद भी उनके पास तैयारी करने के लिए समय नहीं है। ये मिथ ज्यादा है, रियलिटी कम है। तो प्लीज, अगर ऐसा मौका आता है, अगर आप मेरी सलाह मान रहे हैं तो मेरी सलाह यही है कि सर्विस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मित्रों, बहुत से मेल इस बात को भी लेकर के होते हैं कि मेरे 40% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में और फलाने में है। आपको बताऊं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए बस। आप चाहे 35% मार्क्स लाए हो और इसका इंटरव्यू बोर्ड भी कोई लेखा जोखा नहीं लेता। सीधी सी बात है कि आप मेंस क्वालिफाई करके बोर्ड के सामने हैं, वो आपकी उस प्रतिभा को मानता है, आपकी उस योग्यता का मूल्यांकन करता है। इसलिए इसको लेकर के भी मन में किसी भी तरह का विचार न लाएं। और मित्रों, जहां तक अटेम्प्ट का सवाल है कि आपने फॉर्म भर दिया है तो अटेम्प्ट काउंट होगा कि नहीं, देखिए अटेम्प्ट की सीधी सी कहानी यह है कि जब तक आप परीक्षा हॉल में घुसकर, आपको ध्यान होगा कि फिर एक अटेंडेंस सीट पर साइन कराए जाते हैं आपके रोल नंबर के सामने, जब तक आप साइन नहीं कर देते तब तक आपका अटेम्प्ट नहीं माना जाता है। ये बहुत क्लियर कट है। मान लीजिए कि आप परीक्षा हॉल में घुस भी गए और 5 मिनट के बाद पेपर बटने के बाद तो आपको नहीं निकलने दिया जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि नहीं 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 देना चाहिए और आप वापस आ गए तो भी अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। वो जब आप साइन कर देंगे वही इस बात का प्रमाण है कि आप परीक्षा में बैठे हैं। तो मित्रों, अब मैं कुछ दोस्तों के नाम ले रहा हूं जिन्होंने मेल भेजे हैं। मानस कुमार झा दिल्ली से, तनुप्रिया सिंह आप भी दिल्ली से हैं, सुशांत कुमार इलाहाबाद से, रजत बोलपुर से, विकास जयानी पिरथला हरियाणा से, संगीता कुमारी रोहतास बिहार से, जीवेंद्र किशोर झा, अभिषेक सोनी, आशीष कुमार भागलपुर बिहार से, चंदन पांडे नवादा बिहार से, कलीम अहमद सवाई माधोपुर राजस्थान से, अश्वनी दीवान थाने महाराष्ट्र से, ओपी जाट अजमेर राजस्थान से, साधना रावत लखनऊ से, निशा मिश्रा पीयूष ग्वालियर से, विजय साहू रांची से, राजकुमार लड्डा जी फरीदाबाद से, तनु कुमारी तोरपा झारखंड से और शालिनी लखनऊ से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्य भी सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और एक बार फिर से जिन दोस्तों ने स्वास्थ्य के बारे में मेरे प्रति चिंता व्यक्त की है उनके प्रति फिर से आभार, और मैं जानता हूं कि जिन्होंने लिख करके चिंता नहीं व्यक्त की है उनका भी स्नेह प्रेम विश्वास सब मेरे साथ है, डेफिनेटली उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो गाइडेंस समाप्त होता है, फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।